आरवी बेड पर सो रही थी, पर आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। करवट बदलते बदलते थक गई और झुंझलाकर बेड पर बैठ गई। क्या है, सोया ही नहीं जा रहा है? ऊपर से बालों में लगा तेल पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब तो सिर चढ़ गया है। जी मिचलाने लगा है इस चमेली के तेल की तीव्र गंध से। पहले पहल परेशानी नहीं हुई, पर अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। रहा जाए भी कैसे, बाल इतने पास आ रहे हैं चेहरे के, बिल्कुल नाक के पास। मिस्टर मेहरा के चक्कर में मुझे भी झेलना पड़ रहा है। दिन तो कट गया, ये रात नहीं कटेगी। आरवी, चलकर बाल धोने ही पड़ेंगे। बोलते हुए आरवी बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद ही बाल धोकर आ गई और अपने बाल सूंघते हुए बोली, अब ठीक है, रूम में तो हल्की हल्की स्मेल आ रही है, जिससे कोई दिक्कत नहीं। कहते हुए टॉवल से बाल पोंछते हुए आरवी खिड़की के पास चली गई। वहां जाते ही उसकी नज़र नीचे गार्डन में खड़े अयांश पर पड़ी। पास ही उसने टेंट लगा रखा था, जिसे देख आरवी बोली, ओहो, अपने से बाहर हुए तो नया कमरा बना लिया, खुले आसमान के नीचे। ये टेंट और आज मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, क्या फ़ायदा इतना सब करने का। ये तो अब भी मज़े ही ले रहे हैं भाई, अमीर लोग, इनका बस चले तो रातों रात महल खड़ा कर दें। ये तो फिर भी चैन से सोने का प्रबंध किया इन्होंने। खैर, मेरा तो प्लान सक्सेस हुआ है। दिन में तो जनाब को कितना झेलना पड़ा, और सुना था मैंने राधे भैया को कहते कि अयांश बाबा को कहीं और नींद नहीं आती अपने कमरे के अलावा। देखकर ही लग रहा है, जिस तरह इधर उधर टहल रहे हैं, यहाँ भी सुकून नहीं। कैसा लग रहा होगा मिस्टर मेहरा, जगह बदलने पर महसूस हो रहा होगा ना कुछ अपना छिन जाने का। मैंने तो सिर्फ आपके कमरे से आपको दूर किया है, पर आपने तो मेरी पसंद की हर चीज़ से। सोचिए ज़रा, मैं तो यहाँ कभी रही नहीं, अनजान जगह है मेरे लिए, मुझे कितनी मुश्किल हो रही होगी यहाँ रहने में। लाकर पटक दिया अचानक यहाँ, जहाँ मेरे पसंद का एक तकिया तक नहीं। एहसास तो दिलाकर रहूँगी मैं आपको आपकी गलती का, कल फिर से यही करूँगी, बार बार करूँगी, तब तक करूँगी जब तक आप मुझे खुद परेशान होकर यहाँ से ना निकाल दें। तभी अयांश की नज़र ऊपर आरवी पर पड़ी, जो टॉवल अपने कंधे पर डालकर अयांश की ओर मुस्कुराते हुए इशारे से टेंट की ओर हाथ करते हुए बोली, सो जाइए। अपने हाथ जोड़कर गाल पर लगाए, आंखें बंद और टेंट की तारीफ करते हुए, ये देख अयांश का जबड़ा कस गया। तभी अयांश को हाथ हिलाकर बाय कहकर आरवी अंदर चली गई। ये देख अयांश गुस्से से बोला, बड़ी खुश हो रही हो ना मुझे यहाँ ऐसे बाहर देख, मैं बाहर तुम अंदर आराम से कमरे में, ऐसा कैसे चलेगा माई वाइफ, डेविल मुस्कान के साथ। इतना कहे अयांश अंदर की ओर बढ़ गया। आरवी बेड पर जाकर सोने ही लगी कि तभी अयांश ने हाथ मारकर दरवाजा खोला। हाय मिसेस मेहरा। ये सुनते ही आरवी ने फट से हैरान होते हुए दरवाजे की ओर देखा। आप? अयांश ने अपने नाक पर हाथ लगाया और इधर उधर रूम को देखते हुए बोला, यहाँ सफाई नहीं की राधे ने? तभी आरवी बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पर अयांश कुछ नहीं बोला, सीधा अंदर आया और आरवी की कलाई पकड़कर उसे बाहर गार्डन में ले आया। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मेहरा, छोड़िए मेरा हाथ। आरवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। तभी अयांश ने आरवी का हाथ छोड़ दिया और आरवी की ओर मुड़ते हुए बोला, लो छोड़ दिया। आरवी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई सहलाई और अयांश की ओर घूरते हुए कहा, आपको अटैक आते हैं क्या जो बार बार ऐसी हरकत करने लग जाते हैं? इतना कहे आरवी मुड़कर जाने लगी कि अयांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। इतनी क्या जल्दी है, जब तुम्हारा हस्बैंड बाहर तो तुम अंदर कैसे, टेल मी वाइफ। अयांश की पकड़ में आरवी कसमसाती हुई बोली, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। तभी अयांश आरवी के बालों की लट अपने हाथ में लेता और सूंघते हुए बोला, अब तो नहीं आ रही स्मेल, तुम्हारे उस चमेली के तेल ने तुम्हें भी परेशान कर दिया होगा ना, तभी तो अच्छे से धो लिए। क्या कह रही थी, जाते जाते जाएगी, अब कैसे चली गई, बोलो, भौहें उचकाते हुए। ये सुनते ही अयांश की आंखों में देखती आरवी ने थूक निकल लिया और मन ही मन खुद से बोली, ये क्या किया मैंने, काश बाल ना धोए होते तो इनको दूर रखने की वजह तो थी मेरे पास, ये चाहकर भी करीब ना आ पाते, ये झेलने से अच्छा मैं वो चमेली का तेल झेल लेती, ओ गॉड। तभी अयांश ने आरवी के चेहरे पर अपनी अंगुली फेरी, क्या हुआ, बाल धोने का पछतावा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कहे आरवी ने अपनी हथेली जो अयांश के सीने पर थी उसे अयांश के पीछे धकेल दिया और झटकाकर अपनी कलाई भी अयांश के हाथ से छुड़ा ली। पर दूसरे ही पल अयांश ने कमर में बाहें फंसाकर उसे अपने करीब कर लिया। घंटों दूर रहा हूँ तुमसे, कहूँ तो आधा दिन आधी रात, अब और तो ना तड़पाओ। ये सुनते ही अयांश की आंखें फैल गई। अयांश और आरवी का चेहरा बहुत पास था, जिससे उनकी आंखें एक दूसरे से जा मिली। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि तभी बारिश आ गई। आरवी ने चेहरे पर बूंद पड़ते ही ऊपर की ओर देखा, छोड़िए मुझे, बारिश आ रही है, अयांश उसकी ओर देखते हुए बोला। तो आने दो, आरवी अयांश की ओर देखते हुए बोली, भीग रही हूँ मैं तो, मैं कौन सा नहीं भीग रहा हूँ, आपसे मुझे क्या, छोड़ो मुझसे नहीं तो किससे है, आपसे तो बिल्कुल नहीं, क्या मोहब्बत या नफरत? अयांश की ये कहते ही आरवी मुस्कुरा दी, मोहब्बत के लायक भी हैं आप सिर्फ नफरत लेने के बने हैं मिस्टर मेहरा, सिर्फ नफरत। चलो मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, तुम्हारी किसी चीज पर तो हक है मेरा। चीज क्या? तुम पर पूरा मेरा हक है, चाहे प्यार करो या नजरअंदाज करो, चाहे चाहत रखो या शिकवा करो, मोहब्बत दो या नफरत बरसाओ, पर जितनी शिद्दत से मैं तुमसे नफरत करता हूँ तुम चाहकर भी ना कर पाओगी मिसेस मेहरा, क्योंकि तुम नहीं जानती मोहब्बत से ज्यादा नफरत की गहराई होती है, नफरत की। आरवी के सिर के पीछे अपना दूसरा हाथ रख उसे अपने और करीब करते हुए, आपको सिर्फ नफरत में हर हाथ पार करना, ज्यादती करना,
बर्बाद करना आता है। मोहब्बत आप क्या करेंगे मिस्टर मेहरा, दीवानगी आप क्या जाने, आप कहाँ किसी को आबाद करेंगे। आपको तो छीनना, तकलीफ देना, दर्द देना आता है। मोहब्बत करने वाले झुक तक जाते हैं और आप झुके, आपकी शान न घट जाए। प्यार में लोग जान ले भी सकते हैं और दे भी जाते हैं, ये आपके बस की बात कहाँ। मोहब्बत में आप झुके, आपकी कमर में फ्रैक्चर हो जाएगा। मोहब्बत तो दूर, आप में तो इंसानियत भी नहीं है। मैं नफरत करती हूँ इंसानियत के दायरे में और आप हैवानियत पर उतर आते हैं। वाकई बड़ी शिद्दत से आप नफरत करते हैं। कीजिए, शौक से कीजिए, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही अयांश ने आरवी को झटका कर छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गई और अयांश जोर जोर से हंसने लगा। आरवी नीचे से ही उसे देख रही थी। तभी अयांश अपनी हंसी रोक अपने हाथों से अपने बाल पीछे कर आरवी के सामने बैठते हुए बोला, फर्क नहीं पड़ा। घंटा क्या, पल पल पड़ रहा है तुम्हारी जिंदगी में फर्क, कहाँ थी और कहाँ आ गई। सी, आरवी की ओर हाथ करते हुए। इस पर आरवी ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से उठकर वहां से जाने लगी कि तभी अयांश ने उसकी बांह पकड़ ली और खुद जमीन पर लेटकर उसे भी अपने ऊपर गिरा लिया। सोचना भी मत, जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये सुन कुछ पल तो आरवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अयांश की मजबूत पकड़ से ना छूट पाई। तो अयांश की ओर गुस्से से देखा और फिर नजरें घुमा ली। ये देख अयांश ने आरवी के गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। आरवी फिर निगाहें हटाना चाहती तो अयांश ने उसका मुंह पकड़ लिया। मना किया है ना, जब मैं पास और सामने हूँ ये निगाहें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, मेरी मर्जी के बिना इन्हें भी हटने का हक नहीं। ये देखें तो सिर्फ मुझे देखें, समझी। आरवी अपना मुंह छटकाते हुए बोली, क्यों सलमान खान हैं आप जो मेरी आंखें आप पर ही टिकी रहें। और कहूँ हाय क्या फेस है, आए बड़े मुझे देखने। अयांश ने आरवी की कमर पर थोड़ा धक्का दिया और उसे और करीब कर बोला,
सलमान खान की भी इतनी औकात नहीं कि ये निगाहें उसे देखें, इन पर सिर्फ मेरा हक है। आई एम नॉट सलमान खान, आई एम योर डेविल हस्बैंड। क्या डेविल हस्बैंड। और दोनों एक दूसरे की ओर नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। बारिश तेज हो चुकी थी और दोनों को भिगाने लगी। मूसलाधार बारिश और आसमान में कड़कती बिजली भी दोनों को विचलित नहीं कर पाई। जितनी शिद्दत से आज आसमान से पानी बरस रहा था, उससे भी कई गुना ज्यादा दोनों की नफरत एक दूसरे पर बरस रही थी। अगली सुबह आरवी बाथरूम से बाहर आई तो छींक रही थी। अत्याचार कम था क्या जो बीमार करके भी रख दिया। तभी राधे ने डोर नॉक किया। मालिक, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। आती हूँ, आरवी ने कहा और राधे चला गया। आरवी आईने के सामने आई जहां सिंदूर और मंगलसूत्र पड़ा था। अब ये और पहनो, उनसे बचने के लिए पहनना ही पड़ेगा, वरना खुद पहनाने पर उतर आएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखा ना कल रात कैसे चिपके रहे, छोड़ा तक नहीं, दूर होना चाहा फिर भी ना होने दिया। वेट वेट, जब बालों में होगा चमेली का तेल तो कैसे आएंगे पास वो एंग्री मैन। हाँ, फिर तो डेविल कुमार मुझे सिंदूर मंगलसूत्र के लिए भी फोर्स ना कर सकेंगे। यस, उनके साथ साथ इस सब से भी मेरा छुटकारा। हाँ, कहाँ है चमेली मेरी सहेली, कह आरवी ने ड्रेसिंग के पीछे हाथ मारा और चमेली के तेल की शीशी निकाली। जल्दी से तेल लगाया बालों में, शीशी वापस रखी और खुद को आईने में देख बोली, अब चल आरवी नीचे, कल रात तंग किया ना उन्होंने, बदला तो बनता है। और आरवी नीचे चली गई। आरवी नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसे ही बैठी तो उसकी छींक निकल गई। छी छी, नाक से कोड़ते हुए। क्या बेटा, तबीयत ठीक नहीं क्या, ठंडे पानी से नहाई हो क्या, दिनकर जी बोले। नहीं, गरम से, सर्दी लगी है तो ठंडे से न नहाए, आरवी बोली। हाँ, ये बारिश का मौसम होता ही ऐसा है, सर्दी रख जाती है, ख्याल रखो बेटा। राधे, गरम गरम चाय दो, सर्दी में आराम मिलेगा, दिनकर जी बोले। जी मालिक, कह राधे ने एक कप चाय आरवी के आगे रख दी और बोला, उस तेल की खुशबू तो अब तक आ रही है, ये कब तक जाएगी, आरवी से। ये सुनते ही आरवी झेप गई और दिनकर जी की ओर देख बोली, हाँ वो कहा ना कल जाते जाते जाएगी, हमने तो धोए बाल, फिर भी अभी तक है, पर चली जाएगी, हल्का सा मुस्कुराते हुए। दिनकर जी या राधे कुछ कहते कि तभी अयांश आ गया। अयांश आकर बैठा ही कि उसे फिर तेल की स्मेल आई। उसने फट से आरवी की ओर देखा, व्हाट द हेल। तभी दिनकर जी बोले, हेल नहीं बेटा, तेल, धोए बाल इसने कई बार, और देखो उस वजह से सर्दी भी लग गई इसको, आरवी छींक रही थी, आज कल तक चली जाएगी चमेली के तेल की सुगंध, अब बिगड़ना मत इस पर, आरवी बेटा आप चाय पियो। आरवी ने जी कहा और अयांश की ओर देखते हुए कप उठाकर सिप सिप करते हुए चाय पीने लगी। अयांश उसे घूर रहा था पर दिनकर जी के सामने कुछ नहीं बोला। उसे एक पल नहीं लगा समझने में कि अयांश ने फिर तेल लगाया है बालों में, वो और सर्दी की वजह बाल धोना नहीं, रात को बारिश में भीगने से है। तभी आरवी चाय का लंबा सा घूंट भरते हुए अयांश की ओर भौहें चढ़ाकर इशारा करती है, अब कहिए। ये देख अयांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और वहां से उठकर ऊपर चला गया। राधे आवाज देते हुए बोला, अयांश बाबा आपकी कॉफी। दिनकर जी अयांश को जाते देख बोले, रहने दे, जब तक ये सुगंध ना जाएगी चमेली के तेल की, ना चैन से कुछ खाएगा पिएगा और ना सोएगा घर में,
थोड़ा परेशान होते हुए। दिनकर जी को परेशान देख आरवी मन ही मन बोली, माफ करना, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं। मैं कोई नहीं, फिर भी आप परवाह करते हैं मेरी। वो तो आपके पोते हैं, उनको तकलीफ में देख आपको अच्छा नहीं लग रहा। बस उनको सबक सिखाने और खुद के लिए कर रहे हैं हम ये सब। आपने ही कहा था ना, ये लड़ाई मेरी है और मुझे खुद लड़नी है। तभी आरवी की नज़र ऊपर अयांश पर पड़ी, जो अपने कमरे से निकल उसके कमरे में जा रहा था। ये देख आरवी ने फट से कप टेबल पर छोड़ दिया और खुद से बड़बड़ाई, ये वहां क्यों जा रहे हैं? राधे हैरानी से पूछा। क्या हुआ? आरवी बोली, कुछ नहीं, तू पिए चाय और राधे नाश्ता भी दो, दिनकर जी ने कहा कि तभी आरवी उठ गई। हम अभी आए, बोल आरवी भागकर ऊपर चली गई। इनको क्या हुआ मालिक? राधे ने पूछा। मुझे क्या पता, और मुझे कौन सा बता कर गई है, दोनों ही एक जैसे, कब क्या करे कोई पता नहीं और ना बताए। जा मेरा अखबार लेकर आ, कह दिनकर जी छड़ी जमीन पर रख चेयर से उठे। मालिक पहले नाश्ता तो कर लीजिए, जितनी भूख थी कर ली, तुम कर लो, पर पहले मेरा अखबार, कह दिनकर जी सोफे की ओर चले गए। आरवी कमरे में पहुंची तो देखा अयांश अपने मुंह पर कपड़ा बांधे रूम में इधर उधर तेजी से चल रहा था। आरवी अंदर जाते ही बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं होना चाहिए क्या यहाँ मुझे? वैसे तुमसे मतलब, कुछ भी करूँ? अयांश अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोले, पर आपका तो यहाँ कुछ नहीं है, आई मीन आप क्या ढूंढ रहे हैं? आरवी ने फट से पूछा। तभी अयांश ने रुककर आरवी की ओर देखा। सुकून, ये सुन आरवी बोली, दूसरों का सुकून छीनना बंद कर दीजिए, खुद ही सुकून पालेंगे। अयांश आरवी की ओर आते हुए बोला, बहुत होशियार समझती हो ना खुद को। हाँ, पर आपके जैसे कभी घमंड नहीं किया, और होशियार नहीं, स्मार्ट नहीं, बेवकूफ हो तुम, और दूसरों को भी बना रही हो। तुम दादू और राधे को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। जाते जाते जाएगी चमेली के तेल की खुशबू, वो यकीन कर सकते हैं तुम्हारे झूठ पर, मैं नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कितनी बड़ी झूठी धोखेबाज हो। जाएगी कैसे स्मेल? जब जाने दोगी तब ना, बार बार तेल लगाओगी अपने बालों में, तब तो कभी नहीं जाएगी। जब मैंने राधे से पूछा था उस तेल की शीशी के बारे में, बोला तुमने फेंक दी, तभी समझ जाना चाहिए था कि इतनी आसानी से मेरे खिलाफ यूज कर रही हो उस हथियार को, तुम अपने हाथों से थोड़ी जाने दोगी। और अब नीचे यकीन हो गया कि अब भी वो तुम्हारे पास इस कमरे में मौजूद है, तेल जिसे लगाकर तुम चमेली बनकर घूम रही हो और मेरा जीना मुश्किल करने पर तुली हुई हो। क्योंकि कल रात तो तुम्हारे बालों में तेल ना था, तो अब कैसे? और अब वो मैं ढूंढ कर रहूंगा। मुझे खुद के पास आने से रोकने के लिए इस तेल का यूज कर रही हो ना? रोक सकती हो तो अब रोक कर दिखाओ मिसेज मेहरा। इतना कह अयांश ने अपने कदम वापस लिए और फिर कमरे की तलाशी लेने लगा। ये देख और अयांश की बात सुन आरवी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, और बड़ी बड़ी आंखों से अयांश को कमरे की तलाशी लेते देख खुद से बोली, मरे अब तो इनके हाथ लग जाएगी फिर। प्लीज प्लीज इनको ना मिले, प्लीज पापा। इतना तो तंग किया ही नहीं इनको कि आप मेरे प्लान को फ्लॉप करने चले, इनको पता भी लग गया, और ये मुझे कब से 3-4 दिन से परेशान कर रहे हैं। उसका क्या, इन पर बड़ा जल्दी तरस आ गया, मुझ पर ना आया। बस हाथ ना आए इनके मेरी वो सहेली तेल जिसका नाम है चमेली। थूक निकलते हुए अपनी हथेली मसलते, होंठों को बिलोते हुए अयांश बेड के नीचे देख तकिया उठाते हुए बोला, दुआ कर रही हो क्या मुझे ना मिले वो तेल? आरवी झेपते हुए बोली, अगर इतनी ही दुआ कबूल होती तो कुछ और ना मांग लेते, जैसे कि मुझसे छुटकारा है ना। ब्लैंकेट उठाकर वापस बेड पर फेंकते हुए आरवी की ओर देखते हुए अयांश बोला, आलतू जलालतू आई बला को टाल दो, वैसे आप फालतू में ही ये सब कर रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है मिस्टर मेहरा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आरवी ने अयांश की ओर आते हुए कहा, गुमराह करने की कोशिश कर रही हो? इतने बेवकूफ तो नहीं आप कि मैं आपको गुमराह कर सकूं, पर सच कहूं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ भी नहीं होगा दुनिया में, नहीं समझे? ये आपकी बेवकूफी ही तो है जो आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पर भूलिए मत मिस्टर मेहरा, हर बुराई का अंत हुआ है, आपके अंदर की भी बुराई का भी अंत होगा, वो दिन वो पल भी जरूर आएगा। आखिर कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? आरवी ने एकटक अयांश की ओर देखते हुए कहा।
ये सुनते ही अयांश को गुस्सा आ गया, परेशान तो था ही, आरवी की ऐसी बातें उसके गुस्से में हमेशा घी डालने का काम कर देती हैं। तभी अयांश ने बेड के टेबल पर रखा वॉस उठाया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो वॉस सामने आईने पर जोर से दे मारा, जिससे आईना टुकड़ों में बिखर कर टूट गया। अयांश की इस हरकत पर आरवी फट से अपने कदम पीछे ले लेती है। अयांश आरवी की ओर आने लगा कि तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी चमेली के तेल की शीशी पर चली गई, जो शीशा टूटने की वजह से उसके पीछे से निकलकर आगे आ गिरी थी। अयांश मुस्कुराया और नीचे से बोतल उठाकर आरवी के सामने करते हुए बोला, यही थी ना, जो मैं चाहूँ ना वो खुद बखुद होकर ही रहता है। ये सुन आरवी ने अयांश की ओर देखते हुए अपना कुर्ता अपनी मुट्ठी में बांध लिया। अयांश के हाथ में वो तेल की शीशी देख आरवी की आंखों में नमी के साथ चेहरे पर उदासी छा गई, और अयांश के चेहरे पर उसकी जीत की झलक मुस्कुराहट के साथ साफ दिखाई पड़ रही थी। क्रमशः